पंजाबी में दलित साहित्य प्रवृत्ति। पंजाब में जाति विभाजन उतना तीव्र नहीं है जितना यह उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र में दिखाई देता है। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन, विशेषतः सिख धर्म के प्रसार ने पंजाबी लोगों की मनोगत संरचना बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। बुल्ले शाह, शेख फरीद आदि सूफी कवियों की वाणी ने भी पंजाबी संस्कृति को अधिक सहिष्णु बनाया। आधुनिक काल में भी सिंह सभा लहर या आर्य समाज आंदोलन आदि समाज सुधार आंदोलनों ने भी लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखलाया। गदर पार्टी, बब्बर अकाली आंदोलन और भगत सिंह के संगठन ने भी 20वीं सदी में पंजाबी समाज को एक असाम्प्रदायिक व गैर जातिवादी समाज बनाने में सहायक भूमिका निभाई। फिर भी मध्यकाल और आधुनिक काल के इन तमाम सकारात्मक आंदोलनों के बावजूद इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पंजाब में ही 1947 में सबसे भयंकर सांप्रदायिक नरसंहार हुआ, जिसमें एक ओर हिंदू और सिख थे तो दूसरी ओर मुसलमान। ये सभी उस समय गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं भी भूल गए और सूफीवाद की भी। इसी प्रकार यदि भी पंजाब में जातिगत टकराव उतने तीव्र नहीं है जितने कि कुछ अन्य राज्यों में, तथा इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ग्रामीण पंजाबी समाज में जातिगत और वर्गगत विभाजन हैं और कई बार यह विभाजन बड़ी तीव्रता से अभिव्यक्त होता है। गुरु ग्रंथ साहब के शिक्षाओं के बावजूद पंजाबी समाज की विभिन्न जातियों द्वारा दैनिक वेतन के सवाल पर गांव में कई बार निम्न जातियों को, जो अपनी जीविका के लिए उच्च जातियों पर निर्भर हैं, का बायकाट किया जाता है। पंजाब में समाज के उत्पीड़ित अंग के रूप में दलितों की उपस्थिति साहित्य में दलित धारा के सृजन का सहज आधार है। पंजाब के दलित दिशा की ओर उन्मुख साहित्य का सर्वप्रथम भंडार तो स्वयं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब ही है। सिख समुदाय के लिए धार्मिक ग्रंथ का प्रतीक यह ग्रंथ पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 17वीं सदी में संपादित किया था। इस ग्रंथ में 6 सिख गुरुओं, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव व नवम सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की वाणी शामिल है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का केवल एक शब्द ही इस ग्रंथ में शामिल है। उनकी अन्य वाणी अलग ग्रंथ दशम ग्रंथ में संकलित है। सिख गुरुओं के अतिरिक्त आदि ग्रंथ में सभी प्रमुख भक्त कवियों की वाणी संकलित की गई है। कबीर, रविदास, नामदेव, सेन, पीपा, धन्ना, शेख फरीद सभी की रचना आदि ग्रंथ में शामिल है। सभी सिख गुरु व भक्त कवि जातिवाद के विरुद्ध थे, तथा इस अर्थ में आदि ग्रंथ जाति विभाजित भारतीय समाज की तीखी आलोचना करता है। वास्तव में सिख गुरु व भक्त कवि मानवता पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ थे। हालांकि जब हम साहित्य में दलित प्रवृत्ति की बात करते हैं तो यह आधुनिक भारतीय साहित्य के संदर्भ में अधिक है। इस परिभाषा को मराठी साहित्य में प्रमुख प्रवृत्ति की प्रतिस्थापना के बाद ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तब से यह प्रवृत्ति अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में प्रतिष्ठा प्राप्त कर अखिल भारतीय स्वरूप धारण करने की चेष्टा कर रही है। मराठी के बाद अभी तक गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी व पंजाबी में ही इस प्रवृत्ति को स्थान प्राप्त हुआ है। आधुनिक पंजाबी साहित्य में, कथा साहित्य में आरंभ से ही दलित चरित्रों को देखा जा सकता है। कहानी क्षेत्र में पंजाबी कहानी के संस्थापक प्रिंसिपल सुजान सिंह को साहित्य में दलित स्वरों का भी पुरोधा माना जाता है। उनकी अधिकांश कहानियों में सर्वाधिक गरीब लोगों की पीड़ा का चित्रण हुआ है। अनेक दलित चरित्र उनकी कहानियों में उघड़ जाते हैं क्योंकि सबसे गरीब लोग दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, किंतु सुजान सिंह ने स्वयं को कभी दलित लेखक नहीं कहा। वे पंजाबी साहित्य की प्रगतिशील धारा के अभिन्न अंग थे और प्रगतिशील साहित्य में ही दलित जन की पीड़ा, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक, की ओर ध्यान दिया जा रहा था। सुजान सिंह द्वारा स्थापित परंपरा को संतोष सिंह धीर व गुरदयाल सिंह आदि लेखकों ने पुष्ट किया। पंजाबी साहित्य पर नक्सलवादी आंदोलन के प्रभाव ने इस धारा को और भी गति प्रदान की। प्रेम गुरखी, कृपाक कजाक, अतरजीत, भूरा सिंह कलेर, नक्षत्र, लाल सिंह आदि ने अपनी कहानियों द्वारा अपनी दलित पहचान को गरिमा प्रदान की। 7वें दशक में अतरजीत की कहानी बठलू चमार से दलित पीड़ा पंजाबी साहित्य के केंद्र में आई। प्रेम गोरखी की अर्जुन सफेदी वाला, भूरा सिंह, कलेर की, टूटे पत्ते आदि कहानियों में भी दलित पीड़न का सामाजिक यथार्थ चित्रित हुआ। 8वें दशक के अंत व 9वें दशक तथा सदी के अंतिम दशक में साहित्य में दलित प्रवृत्ति एक सच्चाई बन गई। कहानीकारों की युवा पीढ़ी में भगवंत रसूलपुरी, देसराज, काली व जिंदर आदि लेखकों ने स्वयं को अधिक मुखर व स्पष्ट रूप में दलित आंदोलन के साथ जोड़ा है। उपन्यास के क्षेत्र में यद्यपि नानक सिंह, करतार सिंह, दुग्गल, जसवंत सिंह, सुरेंद्र सिंह, नरूला आदि सभी ने दलित जीवन की पीड़ाओं को चित्रित किया है, तथापि असली दलित नायक गुरदयाल सिंह के उपन्यास मणि द दीवा में जगसीर के रूप में प्रस्तुत हुआ। जो उपन्यास 6वें दशक के अंत में प्रकाशित हुआ वह यह पंजाबी उपन्यास के एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। गुरदयाल सिंह ने बाद में और भी उपन्यास रचे, वे अब भी वे रचनारत हैं। अड़होए व परसा आदि उपन्यासों में उन्होंने अपनी ही मणि द दीवा से स्थापित परंपरा को और आगे बढ़ाया। पंजाबी की एक अन्य प्रतिष्ठित उपन्यासकार सोहन सिंह सीतल ने अपने उपन्यासों में दलित जीवन को अत्यधिक सहानुभूति से चित्रित किया है। उनके अधिक प्रसिद्ध उपन्यासों तूता वाला खो व युग बदल गया में दलित चरित्र बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित हुए हैं। एक अन्य उपन्यासकार जिन्होंने दलित जीवन को केंद्र में रखा लेकिन जिनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया वह हैं गुरुचरण सिंह राव। राव का महत्वपूर्ण उपन्यास मशालची ग्रामीण व्यवस्था में दलित स्थिति को सशक्त ढंग से चित्रित करता है। राव का असामयिक निधन हो गया और उनके उपन्यास को आंदोलनों द्वारा अभी उचित स्थान दिया गया है। जसवंत सिंह विरदी रचित उपन्यास निश्चल ना ही चीत श्रमिक वर्ग के देवता विश्वकर्मा के जीवन पर आधारित है। निंदर गिल द्वारा रचित उपन्यास दास्ता दलितांधी पंजाब के दलित जीवन का व्यापक सामाजिक राजनीतिक अध्ययन तो प्रस्तुत करता है लेकिन इस प्रक्रिया में उपन्यास कला का ह्रास होता है और यह एक पत्रकारिता का वृत्तांत भर रह जाता है। हाल के वर्षों में प्रकाशित नक्षत्र का उपन्यास बाकीदा सच भी दलित जीवन से संबंधित है। पंजाबी में अन्य अनेक उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में दलित जीवन को उकेरा है। पंजाबी में प्रथम दलित आत्मकथा 1994 में प्रकाशित हुई। प्रेम गोरखीकृत गैर हाजिर आदमी शीर्षक यह आत्मकथा हिंदी में दलित आत्मकथा के चलन से भी एक वर्ष पूर्व छपी। मराठी दलित साहित्य में आत्मव्रत या आत्मकथा एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुई है जिससे दलित साहित्य प्रवृत्ति की विशेष पहचान बनी है। यह लगता था कि अन्य भाषाओं में भी आत्मकथा दलित साहित्य की विशिष्ट पहचान बनेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस पर अन्य भाषाओं में मराठी आत्मवृत्तियों की परंपरा उस रूप में अपनाई भी नहीं जा रही। मराठी आत्मवृत्त दलित जीवन का यथातथ चित्रण है, चाहे ये जीवन जितना भी कुरूप क्यों न हो लेकिन प्रथम पंजाबी दलित आत्मकथा दलित जीवन का कुछ हद तक रोमांटिक चित्रण है। यद्यपि इसमें पीड़ा और यातना है तथापि लेखक ने इसे नाटकीयता के साथ कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। नाटक एकांकी विधा में डॉक्टर हरचरण सिंह ने अपने रत्ता सालू आदि नाटकों में अनेक दलित चरित्र प्रस्तुत किए। बलवंत गार्गी अपने चित्रण में रोमांटिक हैं लेकिन अपने नाटकों लोहा कुट्टु, केसरो, कनक दिवल्ली आदि में उन्होंने भी दलित पीड़न को अंकित किया है। समकालीन नाटक में चरणदास सिद्धू व अजमेर औलख व गुरचरण सिंह आदि नाटककारों व मंच निर्देशकों ने अपने नाटकों में दलित पीड़ाओं को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। पंजाबी कविता में दलित धारा काफी प्रबल है। पंजाबी कवियों में बड़ी संख्या में कवि दलित पृष्ठभूमि से संबंधित हैं फिर भी सभी ने दलित जीवन को अपने सृजन के केंद्र में नहीं रखा है। वास्तव में पाश जैसे कई कवि दलितों की पीड़ा के अधिक प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इन दिनों लाल सिंह दिल को प्रमुख दलित कवि की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाल सिंह दिल आज पंजाबी के प्रमुख कवियों में एक हैं लेकिन यह बात पूरी निश्चिंतता के साथ नहीं कही जा सकती कि वे दलित केवल दलित संवेदनशीलता के कवि हैं। वास्तव में दिल भी पंजाब के 7वें दशक की क्रांतिकारी साहित्यिक प्रवृत्ति की देन है जिसमें पाश, वरियाम, संधु, सुरजीत पातर, अजमेर औलख व अनेक प्रतिभाशाली लेखकों को स्थापित किया है। सही अर्थों में गुरदास राम आलम आदि प्रतिनिधि दलित कवि हैं जिन्होंने अपने सभी काव्य संग्रहों में दलित जीवन पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वर्गीय संतराम उदासी स्वर्गीय मनजीत कादर, मदन वीरा, गुरमीत कल्लर, धर्म, कमयाना आदि कुछ अन्य समकालीन पंजाबी कवि हैं जो पंजाबी कविता में दलित धारा को स्थापित करने में प्रयत्नरत हैं। पंजाबी में दलित आलोचनात्मक लेखन बहुत कम है। डॉक्टर गुरुवचन ने आलोचकों द्वारा पंजाबी लेखन की उपेक्षा का जिक्र किया है। प्रेम प्रकाश ने अपनी पत्रिका लकीर का 1995 में जाति अंक निकाला, लेकिन इस अंक में दलित शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया। इस अंक में पंजाबी लेखकों की जाति उद्घाटित करने पर जोर अधिक था और साहित्य में दलित धारा पर ध्यान बहुत कम। पंजाबी में दलित साहित्य सभा भी बनी और इसने फगवाड़ा में 1994 में प्रथम पंजाबी दलित साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया। इस सम्मेलन के पेपर बाद में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किए गए, लेकिन इनमें से अधिकांश पेपर मराठी दलित साहित्य से प्रेरित हैं, कुछ अनुवाद हैं। पंजाबी साहित्य की दलित परंपरा पर इन पेपरों में बहुत कम सामग्री है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1995 में जब भारतीय साहित्य में दलित व नारी लेखन विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई तो पंजाबी के दलित साहित्य पर कोई आलेख नहीं प्राप्त हुआ, जबकि पंजाबी के नारीवादी लेखन पर एक आलेख जरूर था। इस अर्थ में पंजाबी साहित्य में दलित प्रवृत्ति अभी शैशवावस्था में है। अभी इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा, तभी यह धारा अपना प्रभाव सही मायनों में दिखा सकेगी। इसके लिए बौद्धिक मंथन की भी बहुत जरूरत है, जो अभी पंजाबी विद्वानों में शुरू नहीं हुई है।